ओम शांति। ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, इसमें आज का क्वेश्चन है, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा। तो इसमें थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉर्मिंग करेंगे, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा। यहां से स्टार्ट करेंगे, राउंड रॉबिन फटाफट। कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देगा, सदा शक्तिशाली बना देगा? शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, एक ही हो गया दोनों, अलग हो गया। अच्छा, मुरली और पावरफुल थिंकिंग, बाबा की याद। आगे बताते जाओ फटाफट। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की चिंतन मंथन। अच्छा, श्रेष्ठ स्थिति, पॉजिटिव संकल्प, सोमान में स्थित, चंद्रशेखर भाई पूरा सरेंडर, तो आत्मा उसे शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, मनन चिंतन, गरम हलवा। अच्छा, अच्छा, ब्रह्मा भोजन खाने से आत्मा को ताकत आएगी। और बीइंग डिटैच्ड, ताजा फल खाने के लिए। अच्छा, हाँ, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? शुभ कामना, अव्यक्त। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, मुरली, अमृत वाला, पावरफुल, लगन में मगन, पीछे वाले बालकनी। आपको बेंजी स्टार्ट करो। ज्ञान, ज्ञान का मंथन, जोर से बोलो जरा। खुशी, खुशी किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। और मौन में रहने से। अच्छा, साइलेंस। और अलफ और बेकी स्मृति, और सेवा से प्राप्त दुआएं, और त्याग तपस्या सेवा, मन मनाभाव रहने से, अंतर्मुखी रहने से, और क्या, ड्रामा की नॉलेज होने से, और सेवा से, धारणाओं से, और तीन बिंदी लगाने से, स्वदर्शन चक्र फिराने से। और उत्तर नहीं आया अभी तक। खुद को भी यथार्थ रीति जान के, बाप को भी यथार्थ रीति जान के। अच्छा, याद करने से, मनसा सेवा से। कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? पांच केले। और ज्ञान डांस करने से। हाँ, गुड। और 500 रुपए की ड्रिल करने से। और स्वदर्शन, यहाँ हो गया स्वदर्शन चक्र, घूम गया यहाँ पहले। तो इसका उत्तर हम बाद में देखेंगे, जैसे बहुत सारी बातें निकली इसमें कि कौन सा भोजन करने से आत्मा सदा शक्तिशाली बन जाती है। तो सभी के जवाब राइट ही है, इसमें कुछ दूसरे पॉइंट्स निकाले हुए। ये हो गया शक्ति और ये शाली। तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे, आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाना है? तो शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट चरण किया हुआ है वो है सोमान। जितना हम सोमान की प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा जो है उतनी पावरफुल बनती जाती है। जैसे सूरज भाई के क्लास में भी हम देखते हैं ना, हमेशा सूरज भाई क्या कहते हैं, जितना आप सोमान की प्रैक्टिस करेंगे, सोमान माना हमारा स्वधर्म जो है, आत्मा का निजी स्वधर्म है, उसकी हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आत्मा जो है उतनी शक्तिशाली बनती जाती है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है एच, एच से क्या होगा, होली, होली इधर आएगा, होली यहाँ पर है, यहाँ पर है ऑनेस्ट। जितना हम ईमानदार रहेंगे, खुद के साथ ईमानदार रहेंगे, बाबा के साथ ईमानदार रहेंगे, यज्ञ के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने ज्ञान योग धारणा सेवा के प्रति जितना हम ईमानदार रहेंगे उतनी जो है आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। अगर कोई बहुत ज्ञान योग कर रहा है लेकिन अगर वो ईमानदार नहीं है, वो तो मैं ऐसे समझता हूँ कि वो जो जितना भी ज्ञान योग कर रहा है उसका उतना मैक्सिमम बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा अगर आप ईमानदार नहीं है। तो जैसे अगर कोई डब्बा है, मतलब कोई बॉक्स है, और बॉक्स खराब हो, हम उसमें बहुत सारी चीजें डालते जाएं, बहुत सारी दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें डालते जाएं, लेकिन अगर बॉक्स ही खराब हो तो क्या होगा, उससे सामान भी खराब हो जाएगा, जितना उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए हमें नहीं मिलेगा उतना बेनिफिट उसका। तो जो ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, हर एक के साथ, खुद के साथ, यज्ञ के साथ, बाबा के साथ, ज्ञान योग धारणा सेवा के साथ में, जिस भी डिपार्टमेंट में हम सेवा कर रहे हैं, जहां पर भी है, हम चाहे सेंटर में है, चाहे मधुबन में है, चाहे कहीं पर भी है, अगर हम ईमानदार नहीं है तो जितना आत्मा को शक्तिशाली भोजन मिलना चाहिए, आत्मा जितनी शक्तिशाली बननी चाहिए उतना आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है। तो सेकेंड हो गया एच माना ऑनेस्टी, उसके बाद है ए, ए से है अशरीरीपन। जितना आत्मा हम अशरीरीपन का अभ्यास करते जाएंगे, आत्मा जो है उतनी शक्तिशाली बनती जाती है, क्योंकि जितना आत्मा जो है देह और देह के संबंधों में आती है, आत्मा की एनर्जी जो है ड्रेन होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, और आत्मा जितना इन सब चीजों से डिटैच होती जाती है, आत्मा की शक्ति जो है अपने आप बढ़ती जाती है। जो पहले के ऋषि मुनि होके गए, उन्हें ना आत्मा का प्रॉपर ज्ञान था ना परमात्मा का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति इतनी पावरफुल कैसे थी, क्योंकि वो अशरीरीपन का अभ्यास करते थे, देह से डिटैच होने का अभ्यास करते थे, उन्हीं से ही उनको इतनी रिद्धि सिद्धि और सारी शक्तियां प्राप्त होती गई। तो जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, आत्मा जो है उतनी शक्तिशाली बनती जाएगी। उसके बाद एक के से नॉलेज, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा ने फर्स्ट नंबर पे क्या रखा है, ज्ञान रखा है, ज्ञान योग धारणा सेवा। प्रॉपर ज्ञान होने के बाद में ही हम प्रॉपर योग भी कर सकते हैं, धारणा भी होगी और सेवा भी होगी। अगर हमको ज्ञान ही नहीं है प्रॉपर, तो हम कुछ भी कर लें उसका हमें प्रॉपर जो मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्लास में भी देखते हैं या बाकी जगह भी देखते हैं, जो चर्निंग को जो है इतना, मंथन को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है, जितना हम मंथन करेंगे ज्ञान का उतना जो है आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, आत्मा में वेस्ट नहीं होता है उतना। तो नेक्स्ट हो गया के, उसके बाद में टी, टी से ट्रूथ। जितना हम ट्रूथ रहेंगे, जितना हम सच्चा रहेंगे, जैसे बता ना सच्चाई और लगभग ऑनेस्टी एक ही बात है, लेकिन ट्रूथ माना यहाँ पे, जैसे उस दिन हमने क्लास में सुना था या कई बार देखा भी, दादी प्रकाशमणि के लिए कहते कि दादी ने कहा कि दादी ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो जितना हम सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, बाबा कहते सच्चे दिल पे साहेब राजी, जितना हम सच्चाई से चलेंगे बाबा के साथ में, भले आपका ज्ञान अच्छा नहीं है, मनन चिंतन अच्छा नहीं हो रहा है, योग आपका अच्छा नहीं हो रहा है, धारणा अच्छी नहीं हो रही, सेवा अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे साथ में, लेकिन अगर हमने बाबा को ठीक से पहचाना है, बाबा को जाना है, जितना हम बाबा के साथ सच्चा होकर चलेंगे, बाबा हमें मदद करेगा। कम से कम हमें रियलाइजेशन तो है कि हम ये नहीं कर पा रहे। जिसको अपनी बीमारी रियलाइज हो गई, वो आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा, लेकिन जिसको रियलाइजेशन ही नहीं है, रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मेरे में बीमारी हो, तो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो जितना हम सच्चा रहेंगे बाबा के साथ में, खुद के साथ सच्चे रहेंगे, हर एक बात में सच्चाई सफाई के साथ बाबा के साथ चलो, बाबा अपने आप मदद करेगा आपको। तो ये हो गया टी, उसके बाद में आई, वो लास्ट में आएगा। ऐसे है ईश्वरी नशा। जितना हमें इस ज्ञान का ईश्वरी नशा रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ा रहा है, उतना जो है आत्मा की शक्ति अपने आप बढ़ती जाती है। बाबा हमेशा मुरलियों में एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया में जैसे कोई राजा का बच्चा होता है, कोई साहूकार का बच्चा होता है, तो उसे कितना नशा होता है। तो जितना हमें ईश्वरी नशा होगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम इस पढ़ाई से क्या बनने वाले जाके, तो उतना आत्मा जो है शक्तिशाली बनती जाती है। तो ये भी नशा है, जैसे बाहर की दुनिया में लोग नशा करते हैं ना, तो शक्ति अनुभव करते हैं, अलग प्रकार की शक्ति अनुभव करते हैं। हमें जो इस ईश्वरी नशे को अगर हम धारण करेंगे, तो हम भी जो है अलग प्रकार की शक्ति अपने आप में अनुभव करेंगे, अलौकिक शक्ति का अनुभव करेंगे हम। ये हो गया आई, उसके बाद में एस, एस से क्या होगा, सेवा और स्मृति। स्मृति भी है, स्मृति यहाँ पे लेंगे ए में, अवेयरनेस में। यहाँ पे एस, एस में लिया है सहन शक्ति। जितना हमारे में सहन शक्ति ज्यादा होगी, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि लास्ट के अंतिम पेपर्स में पास होने के लिए या अंतिम समय के परीक्षाओं को देखने के लिए, उनसे गुजरने के लिए सहन शक्ति की बहुत जरूरी है। जितना सहन शक्ति हमारे अंदर होगी, उतना हम सारे पेपर्स को, सारे विघ्नों को आराम से इजीली पार कर सकते हैं। तो आत्मा को जितना हम सहनशील बनाते जाएंगे, इसलिए सहन शक्ति कहा गया है। पहले सहनशीलता जो है गुण होता है, उसके बाद जब वो फुल हो जाता है तो वो शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो सहन शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है। तो जितना हम सहनशील बनते जाएंगे, आत्मा उतने आप अपनी पावरफुल बनती जाएगी। उसके बाद में एच, एच से है होलीनेस। जितना हम पवित्र बनेंगे, होली पवित्रता भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे बाहर की दुनिया का एग्जांपल दिया कि जो पहले ऋषि मुनि साधु संन्यासी होकर गए वो पवित्र रहते थे, भले बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से नहीं होते थे। बाबा जैसे कहते ना, वो लोग पवित्र है लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप बच्चे स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि आप बाबा के श्रीमत पे पवित्र रह रहे हो। हाँ, वो अपनी इच्छा से, लेकिन उनमें फिर भी शक्तियां बहुत सारी थी क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी शक्ति है। जितना हम पवित्रता को, होलीनेस को अपनी लाइफ में लाते जाएंगे, आत्मा जो है उतनी शक्तिशाली बनती जाएगी। उसके बाद में ए से जैसे बताए स्मृति, या हम कहेंगे अवेयरनेस, अटेंशन। जितना हम जिस बातों पर अटेंशन देंगे, हम दिन भर पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सवेरे अमृत वेला कर लिया, शाम का योग कर लिया, दिन में मनन चिंतन कर लिया, लेकिन दिन भर अगर हमारा अपने आप पर अटेंशन नहीं है, चलते फिरते हम ये अभ्यास नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं चल रही हूं, मैं आत्मा जो है भोजन कर रही हूं, अगर उसी का हमें अभ्यास नहीं है तो उतना जो है मैक्सिमम बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। जितना हम अटेंशन देते जाएंगे खुद के ऊपर, खुद की गलतियों के ऊपर, कौन सी गलती हमारे से हो रही है, और उसी गलती पे हम जितना अटेंशन देंगे उस पर फोकस करेंगे, तो वो जो है आत्मा जो है उतनी शक्तिशाली बनती जाएगी। अपनी गलतियों से सीखना है, तो गलती माना ये नहीं कि एक ही गलती दोबारा होते जाए, उस गलती के ऊपर अटेंशन दे के आगे जो है उससे निकलना है। एक व्यक्ति होता है, उसकी बीवी शरीर छोड़ देती है, तो उसको अर्थी लेके जाते हैं उठा के उस पर, तो जैसे उनके घर से बाहर निकलते हैं गली से बाहर, तो एक खंभा होता है, तो खंभे से अर्थी टकरा जाती है और बॉडी नीचे गिर जाती है, तो उसको झटका लगता है, फिर उसकी बीवी जिंदा हो जाती है। फिर 4-6 महीने जिंदा रहती है, 1 साल, फिर थोड़े समय के बाद में वापिस शरीर छोड़ देती है, तो फिर उसको लेके जा रहे होते हैं अर्थी पे, फिर वो खंभे से टकरा जाते हैं, वहां पे घर से बाहर निकलते खंभा होता है, फिर वो बॉडी गिर जाती है, फिर वो जिंदा हो जाती है। फिर थर्ड टाइम फिर जब वापिस शरीर छोड़ती है, और जैसे वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, वो देखता है कि अब खंभा आने वाला है, तो बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, तो बोलते हैं राम नाम सत्य है खंभा संभाल के, राम नाम सत्य है खंभा संभाल के। तो हमें हमारी गलतियों पे अटे, तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया एक जोक्स के लिए। जो कोई भी खंभा नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उससे सीख के हमें आगे बढ़ना है, अटेंशन देना है मेन बात, जो बताया अवेयरनेस होनी चाहिए, माइंडफुलनेस जो होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए हमारे लाइफ पे हमारा, कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद में एल से लव एंड लॉ, लव एंड लॉ के साथ में लवलीन। जितना हम बाप की याद में लवलीन रहेंगे, बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, उतना आत्मा जो है शक्तिशाली बनती जाती है। हम जैसे यहाँ पे माताओं को देखते हैं ना, कहीं हमेशा बाबा 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 करते रहेंगे, भले वो कितना ज्ञान समझाए नहीं समझाए हो तो वो जाने बाबा जाने, लेकिन बाबा बाबा कहने से उनको इतनी ताकत मिलती जाती है कि एकदम खुशी का उनका पारावार नहीं रहता, इतना नशा चढ़ जाता है। तो जितना हम बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे उतना जो है आत्मा अपने आप जो है शक्तिशाली बनती जाती है। तो लवलीन माना ये नहीं कि कोई हम योग में बैठे और उस अवस्था का अनुभव करें कि मैं परम धाम में हूं और या सूक्ष्म वतन में हूं और बाबा की याद में ही प्यार में खो गई, इस देह को भूल गए, वैसा नहीं। जितना हम बाबा को अपने डेली लाइफ में यूज करते जाएंगे, चाहे ज्ञान योग धारणा सेवा कर्म में कहीं पर भी, जितना हम बाबा के प्यार में खोए रहेंगे लवलीन रहेंगे उतना जो है आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। और लास्ट का है आय, आय माना इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जिसे हम कहते हैं साइलेंस कह सकते हैं। जितना आत्मा साइलेंस में रहती है, इंट्रोवर्ट रहती है आत्मा, उतना शक्तिशाली बनती जाती है। तो ये जो थे कुछ पॉइंट्स आत्मा को शक्तिशाली बनाने के। अब जो है बाबा ने उत्तर दिया वो हम पढ़ेंगे। प्रश्न था कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा, तो बाबा ने उत्तर दिया है, कौन सा उत्तर होगा, खुशी का, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जितना हम खुश रहेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में रहने वाला सदा शक्तिशाली रहेगा। तो खुशी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताई, ये सब करना पड़ेगा। और चिंतन किसका, ज्ञान का चिंतन, पर चिंतन प्रदर्शन छोड़ के ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। जहां पे हम दूसरों के साथ में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, वहां पे हमारी खुशी कम हो जाती है। जहां हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, इसमें ऐसा है और मुझ में ऐसा है, इसके पास ये है और मेरे पास ये चीज नहीं है, जहां पे हम तुलना करना शुरू कर देते हैं, खुशी जो है हमारी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। कई बार क्लास में कह चुके कि कहीं पर स्लोगन लिखा है, यू आर अ यूनिक एक्टर, इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स इट मीन्स यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर हम दूसरों के साथ में हमारी तुलना कर रहे हैं तो हम अपने आप की जो है निंदा कर रहे हैं, अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरों की हर एक की स्पेशलिटी अलग अलग है, दूसरों के साथ में कभी भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आज के वरदान में भी सुना है ना, स्पेशलिटी, हर एक की स्पेशलिटी अलग है। किसी में मनन चिंतन की स्पेशलिटी है, किसी में स्थूल सेवा करने की स्पेशलिटी है, किसी में कौन सी स्पेशलिटी है, तो हर एक की स्पेशलिटी अलग अलग है। हर कोई सोचे कि हम एक दूसरे के जैसा बने, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं बन सकते ना, क्योंकि हर एक को बाबा ने अलग अलग संस्कार दिए, हर एक का स्वभाव अलग है और इस हिसाब से हम चलते हैं। और कौन सी चीजें जो हमारी खुशी को नष्ट कर देती हैं? एक हो गया कंपैरिजन, खुशी को, नहीं नहीं खुशी को बढ़ाने वाली चीजें नहीं, बढ़ाने वाली हो गई, खुशी को कम करने वाली चीजें। अब हाँ, अपनी कमजोरियों का ही बार बार चिंतन करना कि मैं ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, नहीं हो रहा है मेरे से, वो हो गया कंपैरिजन में हो गया। अवज्ञा ही करना खुद को, खुद के बारे में अगर हम नेगेटिव थॉट रखते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हम कर ही नहीं सकेंगे। फिर नेगेटिव ही सोचते रहते हैं हमेशा खुद के बारे में। बाबा ने जैसे कहा है ना कि बाबा जो भी हमें सम्मान देते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मैं अपवित्र आत्मा नहीं हूं। कभी कहा बाबा ने मैं अपवित्र आत्मा नहीं? अपवित्र नहीं माना क्या हो गया? मैं पवित्र हूं, मैं अशांत आत्मा नहीं हूं। बाबा ने कभी कहा ऐसे? नहीं कहा। बाबा ने क्या कहा? शांत आत्मा हूं। जितना पॉजिटिव चीज पे ध्यान देंगे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना कि जितना पॉजिटिव चीज पे ध्यान देंगे, वो चीज अपने आप हमारे लाइफ में आती जाती है। इसलिए हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, निगेटिव चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अगर किसी में जो है अगर 100 अवगुण है और एक गुण है, तो बाबा हमेशा उसके एक गुण को ही देखता है, तो वो गुण जो है आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा जो है गुणों का सागर कैसे बनता है? क्योंकि बाबा हमेशा गुणों को ही देखता है। है तो है, लेकिन बनता कैसे बाबा? बनता कैसे? तो बाबा हमेशा गुणों को ही देखता है, बाकी सब गुण आते जाते हैं ना। तो हमें भी जो है जो एक गुण है, बाकी अवगुण हमें पता है, एक जानना पहचानना अलग बात है कि भाई इसमें ये बुराई है, ये व्यक्ति ऐसा है, बात अलग है करके। लेकिन उसी बात पे अगर हम बार बार अवगुण के ऊपर फोकस करेंगे, तो वही अवगुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि जितना हो सके उस व्यक्ति के, उस आत्मा के गुणों के ऊपर फोकस करें, तो वो गुण जो है हमें दिखाई देंगे और वही गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, जितना श्रीमद का हम उल्लंघन करते जाएंगे, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक बाबा ने हर चीज के लिए हमें श्रीमद दी है। अगर हम श्रीमद पर नहीं चलते हैं, श्रीमद तो एक्चुअली ऑल ओवर हो गया, अगर हम श्रीमद तोड़ रहे हैं तो आत्मा कभी खुश रह ही नहीं सकती। और दूसरों को देखने से, हाँ, तुलना जैसे होता है, कंपेरिजन करने से या ईर्ष्या करने से। एक कंपैरिजन एक होता है कि उसके पास ये चीज है हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे भाई साहब ने बताया ईर्ष्या करने से कि उसके पास ये है और हमारे पास नहीं है। अगर कंपैरिजन ईर्ष्यात्मक रूप में अगर लेते हैं, उसे ईर्ष्या के रूप में लेते हैं, तो वो चीज जो है हमारे लाइफ को खराब करती है। क्योंकि जैसे कहा ना कि ईर्ष्या करने से उसकी जो बुराई है वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। हमारे में वो चीज नहीं है या हमारे पास वो चीज नहीं है, ड्रामा। हर एक का भाग्य अलग अलग है, जिसके जो भाग्य में लिखा है उसे वही चीज मिलेगी। आपके भाग्य से ज्यादा भगवान भी आपको दे नहीं सकता, और आपके भाग्य में जो लिखा है वो भगवान छीन भी नहीं सकता। ये हमको लौकिक में बताया था हमारी माता जी ने, इसलिए ये बात अभी भी दिमाग में फिट है। हम कभी किसी के साथ जिसके जो भाग्य में लिखा है वो उसको मिलने वाला है, हम उससे छीन भी नहीं सकते और भगवान दे भी नहीं सकता। इसलिए अपने आप में संतुष्ट रहो, जो आपको मिला उसमें संतुष्ट रहो, हर एक अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है। तो ये हो गया ईर्ष्या। अगर हम ईर्ष्या करते तो हमारी खुशी कम हो जाती है। हमारे पास जो है उसका भी सुख नहीं ले सकते, उसका भी अनुभव नहीं कर सकते, उसका भी मजा नहीं ले सकते, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को ही देख रहे हैं। दूसरा जो है हलवा पूरी खा रहा है, लेकिन हम दाल रोटी खा रहे हैं और हम उसी को देख रहे हैं कि वो हलवा पूरी खा रहे हैं, तो जो दाल रोटी है उसका भी मजा हमें नहीं मिलेगा, उसकी भी शक्ति हमें नहीं मिलेगी। बदली नहीं होता है ड्रामा में, बदली कोई भी चीज नहीं होती है। बाह्य मुक्ता, अंतर्मुक्ता के अपोजिट बाह्य मुक्ता। जितना हम बाह्य मुक्ता में रहेंगे वो सब जो है हमारी खुशी को कम कर देता है। और ड्रामा की नॉलेज की कमी, यहाँ पे बाबा ने आगे ही बताया, उत्तर दिया है, ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। तो बाबा ने मेन उत्तर दिया, सदा खुशी में रहने के लिए क्या करना है? ड्रामा, जो कुछ हुआ ड्रामा। जैसे गीता में भी अर्जुन को बताया ना जब लड़ाई के पहले कि ये तो सब पहले से ही मरे पड़े हैं, और जो हमें पता है अगर कोई व्यक्ति को कुछ बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि ये 6 साल 3 महीने के बाद में, सॉरी 6 महीना या 3 महीने के बाद में शरीर छोड़ने वाला है, तो हम पहले से जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। कई लोग जो पता है कि ये आज नहीं तो कल शरीर जाने वाला ही है ना, तो उसके लिए फिर क्यों हम ज्यादा टेंशन ले या करते बैठे हैं? वो हर एक की अलग थिंकिंग के ऊपर है कि आप उस चीज को किस रूप में ले रहे हैं, लेकिन हमने लौकिक दुनिया में भी देखा कि कई लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें पता है डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर है, आप 3 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाले, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उन्हें कैंसर है या डॉक्टर ने कह दिया कि आप 3 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाले। बोलते चलो ठीक है, अच्छा बात है, बूढ़ा होने के होके शरीर छोड़ने के बजाय जवानी में ही शरीर छोड़ देवे तो अच्छा है, किसी की सेवा तो ज्यादा नहीं लेनी पड़ेगी करके। ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज को, उस सिचुएशन को किस रूप में लेते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया कि अगर ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। तो ड्रामा क्या होता है? डेफिनेट। ड्रामा में हर चीज फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो होना है वो माना होना ही है। जैसे कहा ना, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भगवान भी आपको दे नहीं सकता, तो उसके लिए रोने की या चिल्लाने की क्या जरूरत है? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए योग करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस योग से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो फिक्स है वो फिक्स ही है। अगर ड्रामा में है तो आप उसके लिए योग करेंगे, आपका योग लगेगा तो ही होगा। हाँ, नहीं है तो होगा ही नहीं। आप जाके बैठो योग में, आपका योग ही नहीं लगेगा।
वही
इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद भी वो चीज नहीं मिलती तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए? ड्रामा। हाँ, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा को पता था कि बच्चों की अवस्था खराब होगी, तो बाबा ने क्या कहा? योग कर ले। जबकि बाबा को पता था कि ये होने वाला नहीं, लेकिन बच्चों की अवस्था खराब नहीं हो इसलिए बाबा ने क्या कहा? ड्रामा। जब मनमोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने क्या कहा? योग करो। उसके बाद बाबा ने फिर उसका अलग जवाब दिया कि भाई आपने जो योग किया उस योग से जो आत्मा को नेक्स्ट जन्म में जिस गर्भ में जाएगी वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ड्रामा, जो कुछ हुआ ड्रामा, नथिंग न्यू। बताए ना, जो चीज होने वाली उसके लिए कोई रोता है क्या? पता है कि ये चीज होने वाली, इसलिए बाबा जो मुरलियों में कहते हैं कि विनाश होगा, ये होगा, सब दुख के पहाड़ गिरेंगे, तो मेंटली हमको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन हम सब बातें सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जा नहीं रही है कि उसका कुछ हमें बेनिफिट नहीं होगा। पता तो है ये होने वाला है, लेकिन जब वो चीज हो रही है, 6 महीने पहले से हमको बताया है कि ऐसे होने वाला है, और जब वो चीज हो रही है तो उसका हमें दुख हो रहा है, उसके लिए हम रो रहे हैं। जो बाबा कहते हैं ना मुरली में, मिरुआ मौत और मलू का शिकार, हमें पता है ये चीज होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हमारी अवस्था अगर खराब हो रही है तो उस ज्ञान को हमने हमारे लाइफ में लाया ही नहीं, इसलिए जो कुछ हुआ ड्रामा। ड्रामा में हर चीज निश्चित है, डेफिनेट, ये चीज होने वाली है। उसके बाद में है आर, आर माना रियल। हर चीज ड्रामा में जो है रियल है, सच्चाई है, जो होना चाहिए वही ड्रामा में हो रहा है बराबर। इसमें जो है ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि जो नहीं होनी चाहिए वो चीज हो रही है। हर एक चीज जो है सच्चाई है वो हमारे सामने आ रही है। उसके बाद में है ए, एक्यूरेट। ड्रामा जो है बहुत एक्यूरेट है, जो हमें मिलना चाहिए, जितना हमें मिलना चाहिए वही चीज हमें मिल रही है। जैसे बताया ना, नसीब से ज्यादा किसी को भी नहीं मिल सकता, जो हमारे इसमें लिखा है वही हमें मिलेगा। और ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, कई बार कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, हमें ओम शांति करता है ना, बहन जी कैसे आप, भाई जी कैसे आप, और आप, हम पहचानते नहीं उन्हें, हम बोलते हैं अभी ये कौन है, फिर बाद में वो सॉरी सॉरी बोलते, नहीं नहीं सॉरी हमको लगा दूसरा कोई है। तो ये भी ड्रामा में फिक्स है, किसी जन्म में हुआ होगा, हमने उनको बोला होगा। हाँ, बिना इसके हम जो इस ग्रुप में बैठे हैं या जहां मधुबन में है, सेंटर पे है, हम उसी सेंटर पे क्यों हैं, हम उसी जगह पर क्यों हैं, उसी डिपार्टमेंट में क्यों हैं? क्योंकि हमारा हिसाब किताब है वहां पे, कुछ ना कुछ है वो सेटल करने के लिए, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे निगेटिव वे में, इसीलिए हम उस जगह पर है। तो ड्रामा में हर चीज एक्यूरेट है। बिना इसके कहा ना कि कोई, अगर आपको जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कई बार किसी के साथ कुछ हो जाता है, वो व्यक्ति फिर सॉरी बोल के चले जाता है, तो कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, इसलिए हम उसी ट्रेन में जा रहे हैं, उसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं। नहीं तो दुनिया में इतनी सारी करोड़ों आत्माएं, हम उनके साथ में क्यों नहीं मिलते? कुछ ही लोगों के साथ क्यों मिलते हम? क्योंकि उनके साथ हमारा हिसाब किताब है। तो ड्रामा जो है बहुत एक्यूरेट है। उसके बाद है एम से है मीनिंगफुल। जैसे बताना, एक्यूरेट है और मीनिंगफुल है। जो चीज होनी चाहिए वही चीज हो रही है। हर एक चीज, जैसे बाबा कहता है कि हर, अगर मैंने चीटी भी बनाई है इस ड्रामा में, तो चीटी का भी कुछ महत्व है, इसलिए वो चीटी बनी। हम बोलेंगे तो वेस्ट है, ये फालतू है, इसका क्या लेना देना है, अगर कैसे कुछ रीजन है, मीनिंग है उसके पीछे, कुछ तो कारण है, यथार्थ कारण है, इसलिए वो चीज बनी है, वरना बाबा बनाता ही नहीं ना। भगवान गलती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो हर चीज ड्रामा में जो मीनिंगफुल है, जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है, जो भी कुछ हो रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मीनिंगफुल है कुछ ना कुछ। और लास्ट में है ए, ड्रामा से रिलेटेड बताऊं, अटल। मेरे हिसाब से एक्यूरेट में अटल आ गया। अच्छा ए में आ गया, ए वाले ए में आ गया। अच्छा, एक्यूरेट ये है। अमेजिंग ड्रामा जो बाबा का, बहुत वंडरफुल है ये। वंडरफुल ड्रामा है, जो चीज एक बार पास्ट हो गई वो दोबारा 5000 साल के बाद में रिपीट हो गई। तो जब हो गया तो उसके लिए क्यों टेंशन लेना, और जब पता है कि पिछले कल्प में भी यही हुआ था और इस कल्प में भी यही होने वाला है, तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है फिर? और अभी तो दोबारा तो पहले से रो रहे माना में ड्रामा का ज्ञान नहीं है ना, वो चीज तो 5000 साल के बाद में रिपीट होगी नहीं वो चीज, क्योंकि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं ना, हम भविष्य के लिए क्यों देखकर भाई ये चीज भविष्य में होने वाली है और बहुत समय के बाद होने वाली है, उसके लिए हम अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं ना। तो जो खुशी को खराब करती जो चीजें जो है, एक व्यक्ति अपने पास्ट को देखता है, मेरे लाइफ में पीछे ये चीजें होते गई, इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मुझे वैसे कहा था ना। किसी ने एक वीडियो भेजा था व्हाट्सएप पे, तो एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा होता है तो उसको दूसरे से धक्का लग जाता है, तो व्यक्ति कहता है पागल बेवकूफ तुम्हें अक्कल नहीं है बिल्कुल, हाँ कहाँ से आ गए, और उस व्यक्ति को बहुत हर्ट हो जाता है एकदम कि ये मुझे ऐसे बोल के गया ऐसे ऐसे। वो तो जब भी वो व्यक्ति ट्रेन में दिखता है उसे हमेशा एक दो दिन में उसे वही बात याद आती है कि इसने मुझे पागल कहा बेवकूफ कहा था ऐसे। वो थोड़े समय के बाद वही इंसिडेंट दोबारा एक दूसरे व्यक्ति के साथ में होता है और वो व्यक्ति देख रहा होता है, तो ये दोबारा उसी को वही जवाब देता है कि पागल बेवकूफ तुम्हें अक्कल नहीं है, और वो बोल के चले जाता है। और ये व्यक्ति मुस्कुराता है, पहले वाला व्यक्ति जो है उसी बात को याद कर करके दुखी होता है और ये व्यक्ति मुस्कुराता है। तो वो उसको पूछता है कि भाई आप मुस्कुरा क्यों रहे, उसने आपको ऐसा बोल के गया? तो वो कहा कि वो व्यक्ति मुझे 5 मिनट से जान रहा है, जब से ट्रेन में चढ़ा हूं मैं 5 या 10 मिनट से जानता है, और मैं अपने आप को 25 साल से जानता हूं कि मैं बेवकूफ हूं या नहीं, या जो भी स्टूपिड हूं या नहीं। वो 5 मिनट में मुझे सर्टिफिकेट दे के गया, तो मैं उसके सर्टिफिकेट के लिए मैं क्यों नाराज हो जाऊं? मैं अपने आप को 25 साल से जानता हूं कि मैं नहीं हूं ऐसे करके। और जिसके अंदर जो होगा वही देगा ना, कचरे का डब्बा खोलेंगे तो क्या निकलेगा? हीरे मोती नहीं निकलेंगे, कचरा ही निकलेगा। हीरे मोती का डब्बा खोलेंगे तो हीरे मोती निकलेंगे। हाँ, तो जो खुद बेवकूफ होगा दूसरे को भी उसी एंगल से देखेगा। वो मुझे नहीं पता जो भी तो ये एग्जांपल है कि दूसरे व्यक्ति हमें सर्टिफिकेट देके जाते हैं, वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो, मानना ना मानना हमारे ऊपर है, हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं ना। इसलिए कहा ना कि हम ड्रामा इसमें जब चलते हैं, बाबा के साथ आप ऑनेस्ट रहिए, खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं है, वो चीज हमने की नहीं है, तो हम क्यों उसके लिए नाराज हो? बाबा जानता है, हम जानते हैं, बाकी हर एक को हमें प्रूफ देने की या क्लेरिफिकेशन देने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक देखते ना यहाँ पे सर्टिफिकेट हाथ में लेके घूमता है, सवेरे सर्टिफिकेट देगा आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत ब्राह्मण कुलभूषण हो ये और वो, और शाम को उनका काम नहीं करेंगे, बोलेंगे फालतू है क्या, अपने आपको क्या समझता है, इसको ईगो हो गया, ये हो गया। हर एक व्यक्ति हाथ में सर्टिफिकेट लेके घूमता है, इसलिए हमें दूसरों के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी खुशी डिपेंड नहीं करनी है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ, बोझ उठा के चल रहा ना, एक व्यक्ति जाता है साधु के पास में और कहता है कि मुझे लाइफ में जो है खुशी अनुभव करनी चाहिए, होनी चाहिए, साहूकार होता है लेकिन खुशी अनुभव नहीं होती, तो उसका कारण क्या है? तो साधु उसको बोलता है चलो मैं जंगल में जा रहा हूँ, शाम को वापस आएंगे, चलो मेरे साथ में। उसको बोलता है ये पत्थर उठा लो एक हाथ में, तो लगभग 1.5 किलो का पत्थर होता है, वो व्यक्ति हाथ में उठा के चलता होता है। तो जब 1.5 घंटा हो जाता है तो उसको पूछता है कि कैसे लग रहा है आपको, तो बोलता नहीं हाथ बहुत दर्द दे रहा है, तो बोलता छोड़ दो ये पत्थर, छोड़ दो अब। फिर थोड़े समय के बाद में उसको पूछता है कि आप कैसे लग रहा है, नहीं बोला बस रिलैक्स लग रहा है। तो बोलता हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है हमारे मन पे बुद्धि पे लेके चलते रहते हैं, जो चीजें जरूरी नहीं है, जो चीजें हो चुकी है होने वाली है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो सारी चीजें हम हमारे मन बुद्धि पे लेके चलते रहते हैं, तो वो चीजें हमें हैवी करती है, तो उससे हमारी खुशी जो है गुम हो जाती है। तो बाबा ने जैसे यहाँ कहा, अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, सदा खुशी बुद्धि तक, नॉलेज के रूप में नहीं, खुशी जो है कहाँ होनी चाहिए? बुद्धि में, अंदर एकदम डीप, जो बाबा जी से कहता है यथार्थ रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। तो यथार्थ रूप से जो चीज हमारी बुद्धि में होगी वो जो चीज कोई हमें निकाल नहीं सकता, हमारी बुद्धि से निकाल नहीं सकता। अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो कभी भी चीज उड़ सकती है, लेकिन जो चीज एक बार मिक्स हो गई किसी के साथ में तो वो चीज जो अलग करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा सदा खुशी बुद्धि तक रहे, नॉलेज के रूप में नहीं, कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। ड्रामा की कोई भी सीन हमारे सामने आती है तो उसमें सदा ये देखना है कि हमें हम अपना कल्याण की बात कैसे उसमें से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे मुझे याद है हमारी लौकिक माता जी हमेशा कहती कि कलयुग है, कलयुग में कई बार ऐसे भी हो सकता है या होता भी है कि आंखों से देखा चीजें और कानों से सुनी चीजें भी झूठ और गलत हो सकती है। आज हम देखते हैं कि साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, किसी का भी सर किसी के भी साथ में जोड़ देते हैं और कुछ भी बना देते हैं, वो चीज होता भी नहीं है। लेकिन ये सब क्या है कि आंखों से देखा हुआ भी कई बार गलत हो सकता है, झूठ हो सकता है, और कानों से सुना हुआ भी कई चीजें झूठ हो सकती है। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। तो मैंने उसमें एक ऐड और कर दिया है कि दूसरों के साथ हमारा संबंध अच्छा रखने के लिए भी कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। हमारा किसी के साथ संबंध अच्छा है लेकिन थर्ड व्यक्ति आके हमें बोल रहा है कि वो ना वो ऐसा है और हम उस बात को मान लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके साथ जो है हमारा संबंध खराब हो जाता है। तो अपनी अवस्था को ठीक रखने के लिए कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करो। संबंध भी अगर आपको ठीक रखना है किसी के साथ में तो उसके लिए भी कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर उन बातों में हम जाएंगे तो सारी बातें हमारी खुशी को खत्म करेंगी। बिल्कुल वही बता ना, वो भी है जैसे जो भी है वही बात है। हाँ, इसलिए कहा ना कि कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठ हो सकता है। मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं जब लौकिक में था तो जिम में जाता था, तो एक दिन जिम में नहीं गया और मैं और मेरी बहन हमें कहीं कुछ प्रोग्राम था वहां पे जा रहे थे। तो मेरे एक फ्रेंड जिम का एक फ्रेंड, अलग अलग फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं ना भैया, कॉलेज फ्रेंड है, यहाँ का फ्रेंड वहाँ का फ्रेंड, तो जिम का फ्रेंड था, उसने मुझे स्टेशन पे देख लिया मेरी बहन के साथ में। तो नेक्स्ट डे पूछता है तुम कल आया नहीं, मैंने कहा कि हाँ कुछ काम था। तो मुझे कहता हाँ गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहा था तुम। तो मैंने कहा भाई तुमने कहाँ देखा, तो बोला मैंने स्टेशन पे देखा। मैं बोला भाई वो मेरी बहन थी। बोलता नहीं तेरी गर्लफ्रेंड थी, तू झूठ बोला करके। मैं बोला नहीं, मतलब इसको कुछ बोल के फायदा नहीं है। वो तीन चार महीने के बाद मैं घर पे आया, जब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई घर पे आया तो मैंने बोला देख मेरी गर्लफ्रेंड को। तो उसको बहुत शर्मिंदा हो गया, बहुत बोला नहीं नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। तो उस समय से मुझे बात अच्छे से याद है जो हमारी माता जी ने कहा कि कभी कभी आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है। यहाँ पे हम टेलीफोन एक्सचेंज में BSNL में एक व्यक्ति था वॉल्टर करके, वो रिटायर हो गया। तो उसकी बेटी की बेटी, वो जब भी उसको फोन करेगा, 8-10 साल की होगी, 5-7 साल की, तो हमेशा उसे बोलेगा हाय स्वीट हार्ट, हाय डार्लिंग। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति सुने तो बोलेगा 60 साल का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, किसको स्वीट हार्ट और डार्लिंग बोल रहे हैं। तो आजकल जमाने के हिसाब से हर चीज बदल रही ना, लेकिन हम उसी एक ही वे से देखेंगे कि ये फोन पे देखो किससे बात कर रहा है और ऐसे ऐसे बात कर रहा है और ये कर रहा, हमको तो पता नहीं सामने वाला वो किससे बात कर रहा है। तो ये है कि आंखों का देखा और कानों का सुना भी कई बार झूठ हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी खुशी को कम करती है। जैसे बाबा का उत्तर था कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा, तो उत्तर है खुशी का। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी में रहने वाला सदा शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक रहे, नॉलेज के रूप में नहीं लेकिन बुद्धि तक। कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।